ये विश्वास और ग्रेट हो गया कि जो है वो निश्चित रूप से आप सबकी कृपा से जो है एक चर्चा कर पाएंगे। तो ये जो अभी प्रसंग चल रहा है वो हिरण्यकश्यप की तपस्या का प्रसंग है। जो हिरण्यकश्यप ने जो इतनी बड़ी तपस्या की उसके बाद उन्हें ब्रह्मा जी से वरदान मिला और ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के उपरांत जो है वो हिरण्यकश्यप के अंदर इतना तेज और इतना प्रभाव आ गया और इतनी शक्ति प्राप्त हो गई कि वो जो है वो संसार में मतलब ऐसे ऐसे काम करने लगे इस भौतिक जगत में जिसको पहले किसी देवता के अधीन हुआ करता था। मतलब जो देवता के बिना जो कार्य नहीं होते थे वो अब देवता के बिना होने लगे। वायु का चलना, अग्नि का जलना, वर्षा का होना, ये सब इसके लिए जो है वो भगवान ने सबके लिए प्रिजाइडिंग डीटीज स्थापित कर रखे। मतलब एक देवता है इसके लिए निर्धारित सबके लिए। परंतु जो हिरण्यकश्यप था उसने अपने तपस्या के प्रभाव से ऐसा किया कि ये सारे कार्य जो है अपने आप होने लगे, अर्थात उसके नियंत्रण से हो रहे थे, वो उसमें किसी देवताओं की आवश्यकता नहीं थी। आप समझिए किसी व्यक्ति को इतनी शक्ति मिल जाए तो उसका जो अहंकार है वो कैसे जो है कितना ऊंचा होगा कि वो सब कुछ कर सकता है संसार में। हम भौतिक जगत में भी देखते हैं किसी को धन का, रूप का और बहुत सारी चीजों का इतना जबरदस्त अहंकार होता है कि वो व्यक्ति जो है वो हर चीज को या हर जो आसपास की वस्तु है उसको अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करता है। अगेन इस बात की यहाँ पर एक प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो और पीछे के श्लोकों से भी चल रहा है कि तपस्या का कितना बड़ा प्रभाव होता है, कितना ज्यादा जो है वो, और ये तपस्या के फल के रूप में ये सब हो रहा है। उन्होंने ऐसी तपस्या करी जिसका जो फल जनरेट हुआ तो उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो तपस्या का कितना प्रभाव है हमारे लिए भी और हम सबके जीवन में, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए किस तरह की तपस्याएं होनी चाहिए, हम कितनी तपस्या कर सकते हैं और उस तपस्या का क्या प्रभाव होता है। तो इसके विषय में दिया गया है जैसे कि बहुत सारी चीजों के तपस्या के बारे में कहा जाता है कि हम अपनी सेल्फिश महत्वाकांक्षा को अगर अलग रख दें और वो एक हायर पर्पस के लिए कुछ चीजें करें तो वो तपस्या है। अपनी सेल्फ मोटिव को, अपनी सेल्फ महत्वाकांक्षा को अलग रख करके एक हायर पर्पस के लिए जब कोई कार्य किया जाता है तो उसको तपस्या की संज्ञा दी गई है, अर्थात उसको तपस्या कहा गया। अभी पीछे प्रभु जी बता रहे थे, प्रभुपाद लिखते हैं इसके उसमें तपस्या के उसमें कि वॉलंटियरली जो है वो इनकन्वीनियंस को, असुविधा को अपने लिए जो है वो लेना, यानी उस असुविधाओं को वॉलंटियरली लेना अपने जीवन में तपस्या। तो हम लोग भी देखते हैं कि हम लोग जब भक्ति में आते हैं तो बड़ी सारी ऐसी तपस्याएं कर रहे होते हैं या करते हैं, तो क्या हमारी तपस्या जो हिरण्यकश्यप की तपस्या थी उससे कुछ भिन्न है या हमारी तपस्या भी उसी तरह से है? तो अलग है जैसे प्रभु जी बता रहे हैं, लेकिन जो हम देखते हैं कि सिर्फ हिरण्यकश्यप ने जो तपस्या करी और उसके प्रभाव से उसने इतने बड़े बड़े उत्पात मचाए, केवल हिरण्यकश्यप की वजह से नहीं हुआ। हम देखते हैं जितने लोगों ने भी तपस्या करी है, पीछे आप श्रीमद् भागवतम में भी बहुत सारे कैरेक्टर आते हैं जिन्होंने तपस्या करी तो उसकी वजह से ऐसा फल जनरेट हुआ। जैसे अब ध्रुव महाराज ने तपस्या करी तो जो संसार में, जो भौतिक जगत में जो है वो सांस लेना मुश्किल हो गया, देवताओं के लिए इतना मुश्किल हो गया तो उनसे सांस नहीं लिया जा रहा था। ये तपस्या का प्रभाव है, कितनी जबरदस्त तपस्या किया उन्होंने। और हम देखते हैं जितने भी राक्षसों ने तपस्या करी है, चाहे वो जो भी रहा हो, कुछ इस तरह की घटनाएं हुई है। या हम देखते हैं कि इतिहास में बड़े बड़े सारे लोग तपस्वी लोग हुए हैं, जैसे कश्यप और अदिति, उन्होंने तपस्या करी तो भगवान प्रकट हो गए। सुतपा पृष्टि गर्भा, तपस्या करके उन्होंने भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त कर लिया। कर्दम ऋषि, उन्होंने ऐसी तपस्या की कि भगवान के आंख से आंसू निकल पड़े उनकी तपस्या को देखकर। और कौन सा सरोवर बन गया था? बिंदु सरोवर। तो और इसी तरह से हम देखते हैं प्रचेतस, प्रचेतस ने पानी के अंदर जाकर के दसों भाइयों ने तपस्या करी, तो वो जो तपस्या थी वो कॉपरेशन का था, इकट्ठे होके उन्होंने जो है वो तपस्या करी। तो तभी भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान प्रकट हो गए। फिर कहने का मतलब यह था कि तपस्याएं जो है वो किसी भी तरह के फल को जनरेट कर सकती है। जैसे आप द्रौपदी महारानी का जीवन देखिए, वो उनका जो पिछला जन्म था जिसमें वो उन्होंने तपस्या करी और शिव जी जब प्रसन्न हुए तो उस तपस्या से वो इतने आप खुश थी या जो भी था, मतलब उनके जीवन में इस तरह था कि उन्होंने शिव जी के सामने 5 बार बोला पति 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 पति, तो शिव जी ने एक मस्त कह दिया। तो और इस तरह से भागवतों में बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी तपस्याएं करके जो है भगवान को ही प्राप्त किया है और बड़ी बड़ी उपलब्धियां करी है। तो इवन जो मेटेरियलिस्ट लोग हैं, जो भौतिकवादी लोग हैं संसार में, वो भी कम तपस्याएं नहीं करते हैं। पैसा कमाने के लिए, परिवार चलाने के लिए बहुत तपस्याएं करते हैं लोग, 12-12 घंटे 15-15 घंटे काम करते हैं और बहुत थक्के खाने के बाद जो है वो कई बार सुबह लोग 5 बजे आप चले जाइए, 7 बजे चले जाइए तो मेट्रो फुल होता है। अब रात के 12 बजे आएंगे तब भी फुल होता है। तो कितनी तपस्या करते हैं लोग। तो इस जो ये जो तपस्या है, ये वस्तुतः ये सारी जो तपस्याएं हैं प्रमुखता वो शरीर के स्तर पर की गई है। ज्यादातर जो समस्याएं जो तपस्याएं हैं और वो शारीरिक तपस्याएं जो है वो रिस्पेक्ट को आकर्षित करती है मोस्टली टाइम, क्योंकि वो देखा जाता है कि जब व्यक्ति शरीर से तपस्या करता है तो दूसरे लोगों को भी दिखता है और दूसरे लोगों को प्रमुखता दिख जाता है। तो वो जो तपस्या है उससे क्या है कि जो रिस्पेक्ट है आप वो व्यक्ति जो है वो रिस्पेक्ट, उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगती है इसकी वजह से। तो क्या होता है कि इस रिस्पेक्ट के वजह से जो है व्यक्ति अपना जो बैलेंस है, अपना संतुलन है उसका, वो धीरे धीरे उस सब तपस्या, अगर वो व्यक्ति दृढ़ता से या किसी गुरु के निर्देशन में तपस्या नहीं कर रहा है तो निश्चित रूप से वो विचलित हो जाएगा या जो अपने मार्ग से जो है वो भटक जाएगा। तो इस हम अभी आगे इसमें अभी देखेंगे कि इसमें जैसे कि भगवान कृष्ण भगवद गीता के 17वें अध्याय में इन तपस्याओं के ऊपर चर्चा की है और भगवान कह रहे हैं कि 3 तरह की तपस्याएं होती हैं, शारीरिक तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। तो जो शारीरिक तपस्या है वो भगवान कह रहे हैं देव तुझ गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच आर्जवम ब्रह्मचर्य हिंसा च शारीरम तपोच्यते। देव तुझ गुरु प्राज्ञ पूजनम, परमेश्वर का, ब्राह्मण का, गुरु का, माता पिता का पूजन करना और शौचम, शौच मतलब पवित्रता, अंदर से भी और बाहर से भी। अंदर की तपस्या शुद्धता कैसे आएगी, अंदर की तपस्या कैसे कैसे करते हैं हम लोग, हरिनाम लेकर के, और बाहर से जो है वो बड़ी सारी चीजें, उसको तपस्या सबको मालूम है कि प्रतिदिन स्नान करना और जो है नियमों का पालन करना। फिर आर्जवम सरलता, सरल होना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब ये नहीं कि केवल ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य का पालन करना है। हम लोग समझते हैं कि जो ब्रह्मचारी है केवल जो उनके लिए केवल ब्रह्मचर्य का पालन करना है, हमारे लिए नहीं है। तो ये ब्रह्मचर्य का पालन करना सबके लिए अनिवार्य है, वो गृहस्थ है तब भी और ब्रह्मचारी है तब भी, और वानप्रस्थ और सन्यासी तो निश्चित रूप से अलग होते हैं चीजों से। तो जो ये ब्रह्मचर्य की जो उसमें और इसके लिए 10 तरह की चीजें बताई गई हैं जिससे हमारा ब्रह्मचर्य खंडित होता है, तो वो एक खैर अलग विषयांतर होगा, मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। फिर है अहिंसा। अहिंसा का मतलब है सिर्फ ये नहीं कि हम हिंसा नहीं करते, हम अहिंसक हैं, अपनी वाणी के द्वारा हम किसी की हिंसा कर सकते हैं, बहुत क्रूरता से बोलना किसी के साथ या बहुत कड़वे शब्द बोलना, ये भी हिंसा का एक रूप है। किसी का भद्दे तरीके से मजाक उड़ाना और किसी का इस तरह से बोलना कि व्यक्ति परेशान हो गया, आपके बोलने मात्र से व्यक्ति परेशान हो गया, तो ये सब जो है वो हिंसा में आता है। तो इन चीजों का त्याग करना भी अहिंसा है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो है ये सब शारीरिक तपस्याएं हैं, और निश्चित रूप से व्यक्ति को ये तपस्याएं करनी चाहिए। फिर वाणी की तपस्या है, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्याय दसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। उद्वेग कर्म न करने वाले वाक्यों को बोलना, अनुद्वेग कर्म वाक्य बोलना, मतलब जिस के बोलने से, जिस की शब्दों से जो दूसरे व्यक्ति परेशान ना हो जाए, दूसरा व्यक्ति बहुत ज्यादा उत्तेजित ना हो जाए, तो इसको बोलते हैं उद्विग्न न करने वाला जो है वो वाणी का भाषण, वाणी बोलना, सत्य बोलना, ये वाणी की तपस्या है। प्रिय बोलना, ये वाणी की तपस्या है। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब भक्त सभा में आने के बावजूद भी हम लोग कंठी पहनते हैं, सब बड़े बड़े सारी चीजें करते हैं, पर असत्य जो है वो जल्दी जाता नहीं है। छोटी सी बात के लिए मजाक में भी सत्य नहीं, असत्य नहीं बोलना चाहिए। मैं अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, तो उसमें कि आप किसी से मजाक कर रहे हो उसमें भी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। और इस तरह से क्या होता है, उसका रिएक्शन जनरेट होता है इस तरह के असत्य भाषण से। तो हम छोटी बातों के लिए, आप कहाँ जा रहे हो, मैं अभी आया। अब जैसे हम, आपको किसी ने फोन किया, आप कहाँ हो, मैं अभी 5 मिनट में पहुंच गया आपके पास, और पता चला हम आधे घंटे में पहुंचते हैं, ये भी असत्य है। श्री राधा राधिका रमण भगवान की, श्री कृष्ण बलराम जी की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, प्रभु जी क्या खाया आपने, कुछ नहीं खाया, पता चला कुछ। तो ये सब क्या है कि ये छोटी छोटी बातें हैं, इसका अगर ध्यान नहीं रखेंगे क्या होता है, हमें लगता है कि हम भक्ति में आ गए तो हमारे लिए सब माफ है। और इसीलिए जो भक्ति में जो उन्नति है वो चेक होती है इस इन सब की वजह से। जब एथिक्स को और इन मॉरल वो चीज़ों को जब छोड़ते हैं तो भक्ति हमारी चेक हो जाती है इसी वजह से। वैसे तो बड़े सारे कारण बताए गए, महाप्रभु कहते हैं कि दूसरे के आने खाने से जो है सबसे ज़्यादा भक्ति पर प्रभाव पड़ता है, और उससे भी ज़्यादा प्रभाव जो है दूसरे की स्त्री और दूसरे पुरुष को देखने से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि हमारी भक्ति चेक होती है फिर, और इसलिए हम भक्ति में जो है आगे नहीं बढ़ते। कहा गया है कि प्राणे न जीवा दग्धा करो दग्धो पतिग्रहा मन दग्धा पर स्त्री भी कार्य सिद्धि कथम भवे। दूसरों का उन्हें खा करके जीवा दग्ध हो जाता है, चल जाता है, तो इस पर इतना प्रभाव पड़ता है कि जब हम जब हरि नाम लेते हैं और अब जब हम चीजों को करते हैं भक्ति की विधियों को, ऑब्वियसली भक्ति की विधि बहुत पावरफुल है, पर हमारी वो जो भक्ति की विधि है उसका बहुत सारा चीज हमें हमारे प्रतिदिन के इन कार्यों को खत्म करने में चला जाता है। तो जो है व्यक्ति की, और कहते हैं कि जो मना दग्धा पर स्त्री भी, हम दूसरी की स्त्रियों को जाने और अनजाने में इतना देखते हैं या दूसरे पुरुषों को इतना देखते हैं कि वो जो आंखें हैं वो उसकी पावर जब खत्म हो जाता है। तभी जो पहले के जो लोग थे वो जंगल में रहते थे, हिमालय में रहते थे, क्योंकि उनको वो लोग दिखाई नहीं देते थे। तो ये इन चीजों का कम से कम ये तपस्या अपने आप हो जाती थी, परंतु शहरों में ये सब बहुत मुश्किल है। फिर भी जितना हम कर सकते हैं हमें ज्यादा से ज्यादा इसका प्रयास करना चाहिए कि हम ये चीजें जो है वो ना हो, आई कॉन्टेक्ट का कम से कम हो, और मतलब इस तरह की जो चीजें हैं कम से कम हमें उस पर बहुत ध्यान रखना है। इसमें उसमें लिखा गया है कि कार्य, अगर ये सब चीजें कोई कर रहा है तो कार्य सिद्धि कथम भवे, कार्य उसका सिद्ध क्यों होगा, उसकी तपस्या है व्यवहार की चीजें वो क्यों पूरी होगी उसकी, क्योंकि वो साथ में ये सब चीजें भी कर रहा है। तो फिर इसमें जो है अनु वाक्यम सत्यम प्रियतम, कि सत्य बोलना है प्रिय बोलना है, ये दोनों काम बहुत मुश्किल है। शास्त्र में एक दूसरी जगह पर एक श्लोक आता है, सत्यम प्रयात प्रियम प्रयात न प्रयात सत्यम अप्रियम, सत्य बोलो प्रिय बोलो, असत्य जो जो सत्य जो है वो प्रिय नहीं है उसको नहीं बोलना चाहिए। अर्थात कोई व्यक्ति अंधा है तो उसको बोलेंगे कि वो अंधे, तो उसकी बहुत खराब लगेगा, हालांकि सच है, परंतु फिर भी सत्य को नहीं बोलना। एक दूसरी जगह पर एक आचार्य लिखते हैं, हिता मनो हार चतुर्लभम वचन, हितकर भी हो और मनोहर भी हो ऐसा वचन दुर्लभ है संसार में। क्यों? आपके हित के लिए भी हो और सुंदर भी हो बात, वो आपको छुपे भी नहीं। तो कह रहे ये बात असंभव है, दुर्लभ है ऐसा वचन कि जो आपकी बात, आपके हित की बात भी हो और आपको सुनने में बहुत प्रिय लगे। तो हम इस तरह से देखते हैं कि है बहुत कठिन, वाणी की तपस्या है, सत्य बोलना, प्रिय बोलना, हितकर वाक्यों को बोलना, परंतु एक साधक के लिए ये सभी बहुत जरूरी है। मैक्सिमम लेवल पर जो है उसको ये सब चीजें करनी चाहिए। फिर क्या है, स्वाध्याय व्यसनम चैव, स्वाध्याय करना प्रतिदिन जो है वो स्वाध्याय करना, ये भी तपस्या का अंग है, स्वयं सेल्फ स्टडी करना। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल्फ स्टडी, क्योंकि शास्त्र प्रभुपाद इसमें आगे लिखते स्क्रिप्चर में वैदिक साहित्यों का अनुशीलन करना। वैदिक साहित्यों का मतलब जो साहित्य है ये श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत गीता और जो दूसरे ग्रंथ हैं उनका प्रतिदिन अनुशीलन करना। और आप इसलिए देखते हैं कि मैं कई बार मैंने देखा है, ये नोटिस किया है, आप सबने किया होगा, ये जो रिनस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब यहाँ आते हैं, मैं पंजाबी भाग में तो अक्सर देखा है, जब भी यहाँ आते हैं, जब भी लेक्चर देते हैं तो तीन बातें जरूर बताते हैं महाराज, बहुत अटेंटिव चैंटिंग करना है, बार बार बोलते हैं इस बात को, और रोज भगवदगीता कौन पढ़ता है और रोज भागवत कौन पढ़ता है, महाराज हर व्यक्ति से पूछते हैं आप खड़े करो। ये यही है कि भगवदगीता और भागवतम, भगवदगीता के महात्म्य लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में भी उसका पाठ करता है भगवदगीता का रोज, गीता शास्त्र विदम पुण्यम यह पठेत प्रयता पुमान, तो गीता शास्त्र को जो है जो केवल पढ़ता है, जो व्यक्ति केवल पाठ पठ पाठन करता है, श्लोकों को पढ़ता है, तो उसके उससे इतनी शुद्धि हो जाती है कि भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। विष्णु पद्म वापनोति, अगला जो लाइन है विष्णु पद्म वापनोति, को विष्णु के पद को प्राप्त कर सकता है कि भगवद गीता को पढ़ के। भय शोक विवर्जिता, जो भय को नाश करने वाला है और शोक का नाश करने वाला है, ये पद्म पुराण के भगवदगीता महात्म का पहला श्लोक है, सात श्लोक है भगवदगीता के महात्म पद्म पुराण में, तो ये पहला श्लोक है कि गीता श्रीमद् भगवदगीता जो रोज पढ़ता है, प्रतिदिन पढ़ता है जो, तो हम इससे इस तरह से हम देखते हैं कि ये वाणी का तपस्या, यहां भी भगवान वही बात करें कि वाणी का जो है तपस्या। और फिर क्या है, स्वाभ्यसनम चैव, अभ्यास करना, जो हमने सीखा है, जो हमने विद्या प्राप्त करी है उसका अभ्यास करना, बहुत मुश्किल है पर ये सब जो है वाणी की तपस्या है। अभ्यास कैसे करेंगे, जो पढ़ी है समझ समझ की है हमने, उसका अभ्यास कैसे होगा, हम दूसरों को जब बताएंगे, हम जब इसको दूसरों से शेयर करते हैं, दूसरों को बताते हैं, तो यही उसका अभ्यास है कि आपने जो ज्ञान लिया है वो ज्ञान को अगर आप दूसरों को बांटते हो तो वही अभ्यास है उसका। ये जो तमाल कृष्ण महाराज की बुक में एक लाइन पढ़ रहा था, उसमें लिखते हैं कि अगर कोई बहुत अच्छी स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन कर रहा है, बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है भागवतम भगवदगीता, परंतु इस ज्ञान को शेयर नहीं करता, तो यही ज्ञान उसके पतन का कारण बन जाता है, क्योंकि इससे जो है वो अहंकार जनरेट होता है उसके अंदर, मतलब वो व्यक्ति अहंकारी हो जाएगा। इसीलिए जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है हमें दूसरों को बांटना चाहिए, बताना चाहिए। इसलिए जो है प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रभुपाद का एक सिद्धांत है, प्रीचिंग इज द एसेंस, जो प्रचार है वही सार है। तो इस तरह से हम देखते हैं, और फिर तपस्या है मन की। अब मन की क्या तपस्या है, मन प्रसादम, हमेशा प्रसन्न रहना, संतुष्ट रहना, जो भगवान ने हमें जिस स्थिति में रखा है उस स्थिति में संतुष्ट रहना, ये मन की प्रसन्नता है। प्रयास जरूर करिए, परंतु उसके बावजूद अगर वो चीजें प्राप्त नहीं हो रही है तो निश्चित रूप से हमें संतुष्ट रहना चाहिए। भौतिक समाज में केवल इच्छा करने से कोई समाज चीजें प्राप्त नहीं हो जाती है, इच्छा के साथ जो है आपका प्रारब्ध भी चाहिए और आपका प्रयत्न भी चाहिए, तभी आपके काम जो है पूरे होंगे। तो इस और इस ये सब करने के बावजूद अगर आप जो है अगर आपको कुछ चीजें आपके प्रयास से भी चीजें प्राप्त नहीं हो रही है तो इसका मतलब हमें ये समझ लेना चाहिए कि मैं इससे ज्यादा और जो है प्राप्त नहीं कर सकता और इसमें संतुष्ट हो जाना चाहिए व्यक्ति को। फिर कह रहे हैं कि सरलता, यहां भी है सरलता, यहां भी था और पहले उसमें भी है सरलता है कि सरल होना, ये मन की तपस्या भी है और शारीरिक तपस्या भी उसमें जो है इसमें दिया गया है कि शारीरिक तपस्या में भी आर्जवन शब्द यूज किया है सरल होना और मन की तपस्या में भी ये शब्द यूज हुआ है सरलता, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। फिर गंभीरता, सरलता का मतलब है कि हमें चीटिंग करने की जो प्रोपेंसिटी है हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से होती है उसको छोड़ना, सरलता का मतलब यही है कि सरलता का ये मतलब नहीं है कि मैं चुपचाप रहूंगा कुछ बोलूंगा नहीं किससे कुछ नहीं बोलना लेकिन पता नहीं कुछ बहुत सारी चीजें करते जा रहे हैं, ये मतलब नहीं है। सरलता का मतलब है हम दूसरे व्यक्ति को चीट ना करें, तो ये सरलता है, मिसगाइड ना करें, चीट ना करें। गंभीरता, गंभीरता का मतलब है शास्त्रों को पढ़ने में भक्ति परक जीवन में जो है वो गंभीरता होनी चाहिए। आत्मसंयम, सेल्फ रिस्ट्रेन, स्वयं को नियंत्रित करना, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। भगवान कह रहे हैं कि ये सारी जो चीजें हैं ये मन की तपस्याएं हैं कि छल कपट से रहित होना और इस तरह से जो है, और मन निग्रह का मतलब है, मन की तपस्या क्या है कि मन को इंद्रिय भोगों से विरक्त कर देना, इंद्रिय भोगों से मन को हटा देना ही मन की तपस्या है। तो ये बड़ी सारी चीजें इसमें दी गई हैं, इवन जो बहुत सारे ऐसे तपस्याएं हैं जो हम लोग भी करते हैं इसमें, और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि बस ऐसी बड़ी सारी तपस्याएं जो अशुभ लोग भी करते हैं, तो फिर अंतर क्या है हमें, हमारा हम जो तपस्याएं करते हैं वो ये जितने भी प्रोसेस हैं भक्ति के अलावा, जितने भी प्रोसेस हैं हठ योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, ये सब जितने भी प्रोसेस हैं स्व प्रयत्न के ऊपर आधारित है, स्वयं के प्रयत्न के ऊपर आधारित है। तो स्व प्रयत्न के ऊपर आधारित है का मतलब उनमें ईश्वर की अपेक्षा नहीं रखी जाती थी कि वो कृपा करेंगे या वो मुझे देंगे, इससे मुझे वो स्वयं के ऊपर उनको होता है कि मैं करूंगा तो मुझे ये चीज प्राप्त हो जाएगी और उनको इन चीजों पर ज्यादा विश्वास होता है। इवन जैमिनी का जो कर्म मीमांसा है, पूर्व मीमांसा जिसको बोलते हैं, तो जैमिनी एक सूत्र बताते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति कर्म करता है या कोई तपस्या करता है तो वो उस कर्म से एक फल जनरेट होता है जिसको अपूर्व नाम दिया गया है शास्त्र में। वो अपूर्व जो है वो जब व्यक्ति का जो तपस्याएं पूरी होती है तो वो अपूर्व में इतनी ताकत होती है कि उसके लिए शुभ कर्मों को प्रकट कर देगा या उसके लिए शुभ लक्षणों को प्रकट कर देगा। तो कह रहे हैं इसमें ईश्वर को की कोई आवश्यकता ही नहीं है, जो जैमिनी जो पूर्व मीमांसा है वो ईश्वर को नहीं मानता, हालांकि आस्तिक दर्शनों में है, छह तरह के जो आस्तिक दर्शन है, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, कर्णाक, वेदांत, योग, उसमें से जो मीमांसक है ये भगवान को नहीं मानता, परंतु फिर भी आस्तिक दर्शन में है। आस्तिक दर्शन की परिभाषा ये है, ये नहीं है कि जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक है, ये परिभाषा नहीं है वैदिक शास्त्रों में। जो वेद को नहीं मानता वो नास्तिक उसको कहा जाता है, जो वेदों को मानता है और ईश्वर को नहीं मानता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, तो उनको आस्तिक दर्शन मानते हैं। तो इस तरह से जो छह आस्तिक दर्शनों में है ये मीमांसा दर्शन, परंतु ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। ये कह रहे हैं कि जो तपस्याएं होती हैं, जो कर्म किए जाते हैं, उसका जब फल जनरेट होता है तो अपने आप ही हमें वो चीजें देने के लिए सक्षम होता है कि हम वो चीजों उन चीजों को प्राप्त कर सकते हो। और आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये फिलोसफी भगवान जब 10वें स्कंध में जब भगवान जब कृष्ण रूप में नंद महाराज को समझा रहे हैं तो इंद्र की पूजा मत करो, तो उस समय भगवान यही फिलोसफी बता रहे हैं, यही मीमांसा की फिलॉसफी है जो भगवान उस समय बता रहे हैं कि इंद्र के करने से क्या होगा, उसको करना ही पड़ेगा अगर हम ऐसे करेंगे तो। इस तरह से जो है उस फिलॉसफी को प्रस्तुत किया गया भगवान के द्वारा। तो फिर हम लोगों के लिए जो उसमें है तो हम क्या क्या करें कि हमारे लिए भी क्या यही है कि हम सेल्फ जो है स्व प्रयत्न के ऊपर आधारित है। आपको क्या लगता है भगवान हम जो प्रयत्न करेंगे, हम जो तपस्या करेंगे उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, हमें मिल जाएंगे? मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? मिलते हैं कि नहीं मिलते? हम जो प्रयत्न कर रहे हैं उससे भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि हम ये प्रोसेस भी अपने प्रयत्न पर आधारित है, भगवान की कृपा का इसमें कोई मतलब नहीं। यही हुआ ना, इसका मतलब तो ये निकलता है। और अगर हम ये मानते हैं कि भगवान की कृपा से मिलता है, तो फिर जो है खुद प्रयत्न करने की आवश्यकता भी नहीं है। और अगर आप बोल कह रहे दोनों से, अगर हम दोनों से प्रोसेस से कहते हैं कि दोनों से मिलता है, तो फिर भगवान की कृपा का महत्व क्या रह गया? नहीं, प्रयास करेंगे तो कृपा मिलेगी, तो भगवान कृपा कर देंगे तो अपने आप हो जाएगा। फिर भगवान का किसका मतलब यह है कि भगवान की कृपा छोटी है, भगवान की कृपा में कुछ कमी है कि प्रयत्न करने के बाद दोनों मिलते हैं तब जाके होता है। ठीक है, भगवान देखते हैं कि आपने क्या किया, परंतु ये आंसर नहीं है। हमारी जो तपस्याएं हैं एक्चुअल में, जो हम वैष्णवों की जो तपस्याएं हैं, वो उसको गुरु को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि ये कृपा साधी प्रोसेस है। ये जो हम तपस्याएं करते हैं ये सब अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादों का यही मतलब है कि हम ये सारी तपस्याएं अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, या गुरु के माध्यम से, मतलब गुरु के अंदर में रह करके हम ये जो तपस्याएं हैं वो कृष्ण को प्राप्त करने की उत्कट इच्छा प्राप्त करने के लिए, कृष्ण को प्राप्त करने की जो है वो तीव्र इच्छा प्राप्त हमारे अंदर उत्पन्न हो, इसके लिए करते हैं। क्योंकि जब तक हम कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी हमारे अंदर, हमें भगवान नहीं मिलेंगे, चाहे हम जितने मर्जी प्रयास कर लें। क्योंकि इच्छा बहुत जरूरी है, क्योंकि जो दूसरे बाकी जो प्रोसेस है आप देखिए, उन प्रोसेस में तो लोग वो लोग यही करते हैं, सारे प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जितने भी तपस्या के सारे प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं, परंतु भगवान को प्राप्त करने की जो इच्छा है उसकी कहीं ना कहीं कमी होती है। तो आप पूछ सकते हो भगवान खुद ही इच्छा कर लेंगे तो हम पहुंच जाएंगे भगवान के पास? हो सकता है ऐसा? हो सकता कि नहीं हो सकता? हाँ या ना? पर नहीं हो सकता ये भी। क्यों? क्योंकि भगवान के अंदर कोई चाह नहीं है। हमारे चाह से भगवान के अंदर चाह उत्पन्न होती है। हमारे, आप समझ बात को, भगवान तभी आत्माराम है क्योंकि उनके अंदर कोई डिजायर नहीं है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। तो उनके, भगवान के अंदर जो डिजायर जो उत्पन्न होती है, वो डिवोटी के अंदर जब डिजायर होती है भगवान को प्राप्त करने की, उस डिजायर की वजह से भगवान के अंदर डिजायर उत्पन्न होती है उस डिवोटी को क्लेम करने की, बस उस डिवोटी को वापस ले जाने की। ये तब होती है जब उस डिवोटी के अंदर इच्छा होगी, चाह होगी भगवान को प्राप्त करने की, तब भगवान के अंदर वो चाह उत्पन्न हो जाएगी। नहीं तो भगवान को आवश्यकता नहीं है। तभी भागवतों में कहता अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार थी तीव्रेन भक्ति योगी न जिंदा पुरुषम पदम। भक्ति योग को बहुत तीव्रता से करनी चाहिए, तीव्रता से। आपकी कामना है तब भी, नहीं है तब भी, तो भक्ति योग के प्रोसेस को अगर हम तीव्रता से करेंगे, इस तपस्या को अगर हम तीव्रता से करेंगे, तो हमारे अंदर पहले इच्छा होगी कि हम भगवान को प्राप्त करें। देन हमारे अंदर जब इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, तो हमारी इच्छा को देखकर भगवान के अंदर इच्छा प्राप्त होगी कि मैं जीवात्मा को जो है क्लेम कर लूं, बुला लूं। हम अपनी इच्छा से भगवान की के अंदर इच्छा प्रकट करेंगे, नहीं तो भगवान के अंदर इस तरह की कोई इच्छा नहीं है। भगवान ने को जो कहना था, जो बताना था, कि शास्त्रों के माध्यम से उन्होंने सब कुछ बता दिया है, क्या आप उनको प्राप्त कर सकते हो? चाहते हैं कि सभी लोग उनके पास वापस आए, पर वो उन्होंने सब शास्त्रों के माध्यम से सब कुछ बता दिया है। पर भक्ति का जो प्रोसेस है वो इस तरह से काम करता है। तभी आप देखेंगे कि जो भाग, और यही भाग भागवतम के पांचवें स्कंद के पांचवें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ऋषभदेव जो है अपने पुत्रों को बता रहे हैं, नायम देहो देह भाजाम त्रिलोके कष्टवन कामान अर्हते पिन भुजांगे तपो दिव्यम पुत्र काम ये सत्यम सुधेत यस्वात ब्रह्म सख्यम तुम अनंत कि तपस्या करो क्योंकि ये शरीर किसके लिए मिला है दिव्य तपस्या करने के लिए मिला है कि अगर हम इस शरीर को प्राप्त करके भी वही सब कुछ करते हैं जो कि एक दूसरे योनि में जो लोग हैं पशु पक्षी या कुछ करते हैं तो इसका किसका मतलब है कि इसका कोई फायदा नहीं हुआ तो निश्चित रूप से हमें जो है वो तपस्या करनी है पर वो तपस्या जो है वो एक गुरु के संरक्षण में और इस तरह से करनी है कि हम अपने गुरु के लिए और गुरु को प्रसन्न करने के लिए करते हैं ये प्रोसेस में फर्क है भक्ति योग के और दूसरे प्रोसेस में वो केवल अपनी जो है वो प्रयत्न पर निर्भर होता है ये कृपा पर निर्भर होता है और कृपा किसकी गुरु की तो ये दोनों जो है ये जो प्रोसेस है इनमें ये अंतर है तपस्या हमें भी करनी है परंतु ये तपस्या अगर हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं और अगर आउट ऑफ लव नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अभी हम आउट ऑफ लव नहीं कर रहे तपस्या आउट ऑफ लव जब आप किसी से कोई प्रेम करता है अगर मान लीजिए किसी कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है तो कहता है कि तुम्हारी ये कलर मुझे शर्ट अच्छी नहीं लगती कभी नहीं पहनता वो शर्ट तो तपस्या क्यों कर रहा है आउट ऑफ लव तो अगर हम उस स्थिति में चले जाएंगे जब जो भगवान हमसे चाहते हैं वैसा भगवान चाहते हैं हम वैसे कर्म जो बड़े बड़े जो सन्यासी हैं जो शुद्ध भक्त हैं वो जो तपस्या करते हैं आउट ऑफ लव करते हैं हम जो तपस्या करते हैं अभी आउट ऑफ लव नहीं है मोस्ट ऑफ देम मैं सबकी बात नहीं कर रहा बट ज्यादातर हमारे में से जो डिवोटी है वो आउट ऑफ लव नहीं है अभी तो हम इसको एक विधि के रूप में कर रहे हैं इसमें विधि करने का फिर मतलब क्या है इससे होगा क्या है विधि से हमें भगवान को प्राप्त करने की हमारे अंदर जो है वो इच्छा तीव्र होगी इसलिए हम तपस्या करते हैं क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं 11वें स्कंध के 14वें अध्याय के 20वें श्लोक में ना साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममूर्जिता कि मुझे कोई तपस्या से प्राप्त नहीं कर सकता न साध्यति माम योगो योग करके भी कोई प्राप्त नहीं कर सकता न सांख्य धर्म का पालन करने से प्राप्त कर सकता है न स्वाध्याय से प्राप्त कर सकता है न त्याग से प्राप्त कर सकता है परंतु मेरे लिए की अर्जित की गई भक्ति से मुझे कोई प्राप्त कर सकता है ये सेम बात जो है वो जड़ भरत रघुवर को बता रहे हैं 5वें स्कंध के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में रहु गणे तपसा नयाति हे रहुगण ये तपस्या से प्राप्त नहीं होता तो ये जो भक्ति है वो तपस्या से का इसमें जो है ऐसा नहीं कि इसमें तपस्या नहीं है बट ये केवल हम ये सोच के कि तपस्या करें और हमें प्राप्त हो जाएगा जैसे हिरण्यकश्यपु ने प्राप्त कर लिया या दूसरे लोगों ने प्राप्त कर लिया कि हम तपस्या करेंगे और हमें प्राप्त हो जाएगा एक डेमी गॉड्स को आप तपस्या करके बड़े आसानी से शायद प्रसन्न कर भी पाओगे परंतु जो भक्ति का प्रोसेस है उसमें तपस्या गुरु की प्रसन्नता के लिए करना ज्यादा आवश्यक है क्योंकि अगर 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 गुरु की प्रसन्नता के लिए नहीं किया जाएगा ये तपस्या तो आप कितनी भी तपस्या कर लें तपस्या का ये मतलब नहीं है कि मैं जैसा चाहता हूं और जब मैं चाहता हूं मैं जो करूं कर लूं मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे रहूंगा मैं चाहता हूं कि चार महीने तक खिचड़ी खा के रहूंगा परंतु अगर ये गुरु के द्वारा अप्रूव नहीं है तपस्या तो ये तपस्या नहीं है हो सकता है आपका इससे पूर्व यह है कि तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी क्योंकि आपने कुछ तो किया है दैट विल जनरेट फल तो जनरेट करेगा पर वो भक्ति परक नहीं होगा और आपको भगवान के नजदीक नहीं ले जाएगा वो आपके पुण्यों में वृद्धि कर देगा अंतर यही होता है गुरु से अप्रूव अगर तपस्या है तो फिर आपको वो कृष्ण के नजदीक ले जाएगा वो तपस्या पर जो तपस्या गुरु से अप्रूव नहीं है तो फिर वो तपस्या केवल पुण्य जनरेट करता है केवल जो है वो पुण्यों को बढ़ाता है जो हिरण्यकश्यपु ने जो तपस्या की उसमें क्या था कि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं था और उसमें जो शारीरिक तपस्या थी उसका ज्यादा महत्व था मतलब शरीर के ऊपर तपस्या शारीरिक तपस्या पर ज्यादा बल था मानसिक तपस्या और वाणी की तपस्या नहीं थी। नहीं तो कोई व्यक्ति एकदम से तपस्या से आने के बाद इतने सारे उग्र कर्म कैसे कर सकता है। तो शारीरिक तपस्याएं जो है उसमें उसका ज्यादा भाव है, पर हमारी जो तपस्या, हमारे प्रोसेस में जो तपस्या है उसमें ज्यादा जो है वो मन का और वाणी की तपस्या का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कि हम वाणी की और जो मन की तपस्याएं हैं उसको ज्यादा करने का प्रयास करें। तो ये कहा जाता है कि जो कोई भी तपस्या है वो हमें भगवान के नजदीक नहीं लाता, क्योंकि अगर जो उस तपस्या के माध्यम से जो प्रेम जनरेट करते हैं, जो तपस्या के माध्यम से जो हम लव एक्सप्रेस करते हैं, वो हमें भगवान के नजदीक लाता है। तपस्या करके जो हम प्रेम उत्पन्न करते हैं, तपस्या कि हम कृष्ण के प्रेम करने के लिए जो तपस्या करते हैं, तो वो जो लव है वो हमें कृष्ण के नजदीक लाता है। वो तपस्या जो है वो हमें कृष्ण के नजदीक नहीं लाएगा। तो और फिर हमारे लिए क्या है, तपस्या है कि जो अपने जो बॉडली डिमांड है उसको डिक्रीज करें, कम से कम करें। माइंड का जो डिमांड है उसको कम से कम करें। तो ये हमारे लिए तपस्या है। संसार में हम देखते हैं कि ज्यादातर जो लोग हैं वो अपने घर के लिए, अपने धन के लिए, अपने स्त्री के लिए, अपने पुत्र के लिए जो है कुछ भी करने को तैयार होते हैं, बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं, आंसू निकालते हैं, आंसू निकलते हैं उनके। और कृष्ण के लिए कौन रोता है, कौन रोता है भगवान के लिए? और जब तक ये भगवान के लिए आंसू नहीं निकलेंगे तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि भगवान जो है वो प्राप्त होने में बहुत समय है। एक शिष्य और गुरु जो है और एक साथ जा रहे थे, बहुत दिन से एक आश्रम में रह रहे थे। जो शिष्य है वो भी तपस्या करते जैसे जैसे गुरु करते थे। तो एक दिन वो शिष्य जो है बहुत पैसा उसने कुछ कर दिया, उसने बड़े टाइम से तपस्या कर रहा हूं कुछ हो नहीं रहा, कहा गुरुदेव ये भगवान कब मिलेंगे? तो गुरु ने कहा समय आने पर बताऊंगा। कहा ठीक है। फिर दोनों जो है एक बार ऐसे स्नान के लिए जाते हैं नदी में, गंगा के किनारे। तो जब दोनों नहा रहे होते हैं तो जैसे ही शिष्य डुबकी लगाता है, गुरु उसके सिर के ऊपर जो है अपना हाथ लगाकर उसे अंदर कर देते हैं, डुबाए रखते हैं उसको। और वो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि कुछ सेकंड की बात नहीं होगी, वो तिर मिला फिर गुरु एकदम से छोड़ देता है। कहता गुरुदेव ये क्या कर रहे थे आप? कह रहा था तुम्हें कैसा फील हो रहा था? अरे मुझे तो लगता अभी गए प्राण, अभी गए बस आप भी चले गए। उन्होंने कहा जिस दिन तुम्हारी ऐसी अवस्था भगवान के लिए हो जाएगी, कृष्ण के लिए हो जाएगी, उसी दिन भगवान तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। कि अब गए बस अब गए, अब प्राण नहीं रुकने वाले, अब निकल जाएंगे प्राण। तो तुम जो उन्होंने समझाया उसको कि जो हम करते हैं उसमें ये भाव आना चाहिए, जब हम इस स्थिति पर आएंगे तो हमें जो है भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। या फिर हम जो हमारी तपस्या है वो भगवान जो कृष्ण गुरु को बहुत आकर्षित कर रही है हमारी तपस्या, अगर हमारे गुरु भी हमारी तपस्या से बहुत आकर्षित है, बहुत प्रसन्न है, तो फिर ये गुरु का दायित्व है कि वो आपको भगवान के पास ले जाएंगे और आपको भगवान से मिलाएंगे। हमारा जो प्रोसेस है फिर ये इस तरह का है। जो मैं कह रहा था कि वो जो अगर हम तपस्या कृष्ण को प्रेम करने के लिए करते हैं तो ऐसी तपस्या हमें शुद्ध करती है। अगर हम तपस्या कृष्ण को के प्रेम को उत्पन्न करने के लिए नहीं करते तो ऐसी तपस्याएं हमें जो है वो शुद्ध नहीं करेगी, या ना हमें राधा कृष्ण के पास ले जाएगी। कोई भी तपस्या अगर हमें कृष्ण के क्लोजर नहीं ले जाती, राधा कृष्ण के क्लोज हम नहीं होते हैं, तो वो तपस्या हमारे लिए बेकार है। परंतु ये तपस्या करने की ताकत कहां से आती है? अटेंटिव हियरिंग और अटेंटिव चैंटिंग से। अटेंटिव हियरिंग अटेंटिव चैंटिंग गिव्स पावर टू, आपको इतना पावर देते हैं कि आप ऑस्टेरिटी कर सकते हो और आप बड़ी से बड़ी तपस्याएं कर सकते हो। ये जो ऑस्टेरिटी है, ये तपस्याएं हैं, ये एक टूल की तरह है, परंतु हमें ये पता भी होना चाहिए कि इस टूल का यूज कैसे करते हैं, नहीं तो ये हमारे जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसको खत्म भी कर सकती है। जैसे कि हिरण्याकश्यप के साथ हुआ, तपस्या तो है पर उसका स्पिरिचुअल लाइफ कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता। तपस्या तो भी है, तो इसलिए जो तपस्या गुरु से अपरूप नहीं है, गुरु के माध्यम से अपरूप नहीं है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं है, तो निश्चित रूप से ऐसी जो तपस्याएं हैं वो व्यक्ति का अहंकार बढ़ाती है। और उदाहरण आपके सामने है हिरण्याकश्यप, और हमारे प्रोसेस के लिए जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये है कि जो हम जो तपस्याएं करें वो केवल और केवल भगवान की और गुरु की प्रसन्नता के लिए करें। इसलिए और तपस्या का ये मतलब बिल्कुल ही नहीं है कि मैं जैसा चाहता हूं और जब चाहता हूं मैं करूंगा। आप प्रभु जी ने या ऑथोरिटी ने आपको ये अप्रूव नहीं किया कि आप इस तरह से चीजें करो, तो आप वो भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। या आप एक सेट जो परंपरा में हमारे परंपरा में तपस्या का है आप उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, हमारे लिए उन तपस्या का ज्यादा महत्व है। फिर हम तपस्या करते हुए जो मॉरल वैल्यूज है, एथिक्स है, उनको भी उनका भी ध्यान रखना चाहिए। हम कई बार जो है बड़े बड़े ट्रांसेंडेंटलिस्ट माला पकड़ लेते हैं और सब कुछ करते हैं, हमें लगता है इन सब चीजों की आप मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है, कैरेक्टर मेकिंग मेरे लिए नहीं है, सत्य बोलना मेरे लिए नहीं है, किसी का दिल दुखाना मेरे लिए नहीं है। तो ये सब चीजें जो है ये हमारे जो तपस्याएं हैं, हमारी जो चीजें हैं भक्ति है, उसको चेक कर देती है, एक बाधा उत्पन्न करती है। तो अगर हम इसमें भक्ति में हमें आगे बढ़ना है और राधा कृष्ण की हमें क्लोज होना है, तो निश्चित रूप से हमें इन बातों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की किसी का कोई प्रश्न है?
हरे कृष्ण।